जसां हरि कथोद्गीतं उनाति भुवनत्रयं जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जय जगन्नाथ बलदीप सुभद्रा संजीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभीष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, राधा दामोदर जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती धारणी की जय, ब्रजदेवीघन की जय, कार्तिक व्रत नियम सेवा दामोदर दुर्जा व्रत की जय, चतुर्मास्य व्रत की जय, भक्तवाणगारी भक्त वृंद की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंदी। अभी हम लोग वृंदावन धाम ब्रजमंडल के अंतर्गत गुरु वैष्णव का अनुगत्य में यहाँ पर कार्तिक व्रत नियम सेवा पालन करने की प्रयास मात्र कर रहे हैं। यदि उनको हेतु की कृपा होगी तो कभी किसी दिन सुष्ठु रूप से ये व्रत पालन कर सकेंगे और उनसे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु ये साधन सिद्ध नहीं है, कृपा सिद्ध है। जब तक वैष्णव रे कृपाले सहित जहाँ रे से ईश्वर तत्व बुझीवारे पारे, जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगा तब तक अपना उछल कूद करो, चाहे पहाड़ लंग जाओ चाहे गड्ढे में गिर जाओ, कुछ होना नहीं है। सोई हुई जो राम रची रखा, तो किंतु राम कैसे रचेगा जब तक भक्तों के आश्रय नहीं है, अनुगत्य नहीं है। तो राम कृपा कभी, भगवत कृपा कभी किसी के ऊपर आता नहीं, बहुत कोशिश करने पर भी नहीं होता। इसलिए हिरण्यकशिपु आदि ने, बड़े बड़े असुरों ने दिग्विजय तो किया, साधन तो किया, किंतु सिद्धि कुछ मिली नहीं। इसलिए ये कृपा सिद्ध है, धाम कृपा चाहिए, नाम कृपा सभी वैष्णवों के भक्तों के हाथ में है। और यदि भक्तजन प्रसन्न हो गए तो सर्वसिद्धि गोविंद चरण सब मिल जाएगा। किसी एक समय कृष्ण उज्जैन में विराजमान हैं तो वहाँ पर गुरु माता ने बोल दिया, माघ के महीना ठंडा बरसात हो रहा है, देखो बेटा सूखे लकड़ी नहीं, कैसे भोजन बनाएंगे, तो तुम लोग जाओ भोजन लकड़ी लाओ। अब शाम हो गया, दिन में तो बोले नहीं सुबह से, जब अंधेरा हो गया तब बोले, तो लकड़ी के लिए अंधेरे में पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, बरसात शुरू हो गया, लकड़ी बीन ली तो ला नहीं पाए, स्वर में टोकरी बांध ली, उठा लिया और नीचे न रख सके बरसात के पानी, ऊपर न रख सके ऊपर से वर्षा, पेड़ के नीचे खड़े हुए और कमर तक पानी भर गया, रास्ता दिखे नहीं सूझे नहीं, हैं कैसे आए। अब वो क्या हुआ, उस समय रात भर ठिठुरते रहे, कांपते रहे, और ब्रह्मचारी है, कपड़े नहीं कुछ नहीं, हैं और ठंडा माँ के महीना और नदी किनारा और ऐसे जंगल, क्या हुए, किंतु कोई उपाय नहीं। तो रात भर लकड़ी गीला नहीं हो जाए, सर में लकड़ी है और नीचे उतारे नहीं, हैं और पहुंच भी नहीं पाए, और चिंता कर रहे हैं गुरु माता को क्या जवाब देंगे, और इधर क्या चिंता कर रहे हैं गुरु महाराज, हैं क्या सोचेंगे, हम अकर्मण्य बेकार की है, कोई काम का नहीं है, जो गुरु जी की सेवा में ही नहीं लग सका, हैं सोच रहे हैं। इधर गुरु महाराज की क्या हुई? गुरु महाराज देखा कृष्ण बलदेव नहीं है, ये कहाँ गए? पूछा तो बोला मैंने जंगल में भेज दिया लकड़ी के लिए, लकड़ी नहीं थी। हाँ, सहमती हुई, डरती हुई, घबराती हुई बोलने लग गई। अब जब कृष्ण बलदेव चिंता कर रहे हैं कि नहीं, और गुरुदेव उससे ज़्यादा अधिक से अधिक चिंता कर रहे हैं, इतना चिंता कर रहे हैं कि कृष्ण बलदेव की रात कब बीत गया उन्हें पता नहीं। हाँ, सुबह नहीं होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव फिर लंटन लेकर के और जंगलों में पहुँच गए, और सुदामा कृष्ण और किसको पुकार रहे हैं? बलदेव को। गुरु जिनके लिए याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जिनके दिल में गुरु के लिए, गुरु के दिल में जिनके लिए जगह है, तो भगवान कैसे नहीं कृपा करेंगे उनको? साक्षात भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, और गुरु पादपद्म में कैसे कर रहे हैं? ढूंढते ढूंढते कृष्ण बलदेव को पुकारते पुकारते आए तो हैं उनको ले आए, और गुरु माता को क्या क्या नहीं उन्होंने सुनाया। किंतु कृष्ण बलदेव की वो सेवावृत्ति देख करके गुरु के हृदय केवल दहल और नहल नहीं गया, पिघल गया एकदम। और क्या बोला? आशीर्वाद कैसे दी? कि तुम्हारे 64 प्रकार कलाएं, सारे विद्याएं तुम्हारे निकट अभी आविर्भूत, अभी प्रकट हो जाए, और तुम्हारे पास सदा वर्तमान रहेगा, कोई नहीं हटा सकता है। और तुम्हें और कुछ पठन पाठन और कुछ पूजन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हुई बताओ? गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, किंतु कृपा सिद्ध गुरु विद्या साविद्या तन मतिर्ज्या, बस गुरु प्रसन्न हो गया तो सब प्रसन्न हो गया, अब बाकी कुछ रहा नहीं। तो कृष्ण बलदेव को सब कुछ, अब कृष्ण बलदेव कहते हैं यदि हम लोग समावर्तन करें, अब सब विद्या तो आपने दे दी, हम समावर्तन करें। उज्जैन में कृष्ण की बुआ भी रहती है, और बुआ जी जब सुने कृष्ण आए बीच बीच में भेंट करने आती, किंतु अब बोले हम समावर्तन करेंगे तो गुरुदक्षिणा तो देना पड़ेगा। जब गुरुदक्षिणा की बारी आई तो बोले ठीक है, मैं गुरु माता से तुम्हारा पूछ लेता हूँ क्या चाहिए। जब जब पूछा तब वो बोले मैं कृष्ण बलदेव को तो छोड़ नहीं सकती हूँ, और कैसे विदाई दूँ, ये तो असंभव है नहीं। तो एक बात है, यदि ये चला जाएगा तो हम तो जी नहीं सकते, हमें यह अपने प्रतिमूर्ति या अपने स्वयं यहाँ रह जाए हैं, क्योंकि ये तो हमने सुना है ये भगवान है और इनके सर्वत्र सब कुछ इनके अधीन है, सब कुछ जानते हैं, तो मुझे तो कुछ दे जाना पड़ेगा। तो क्या देंगे? बोले मेरे एक पुत्र था, वो समुद्र स्नान करने प्रवास में गए तो समुद्र ने ले ली, तो हम मैं यही मांगूंगी मेरा बेटे को लौटा के दो। और बेटे कहाँ से लौटाएंगे, खुद ही रहेंगे हमारे पास, जब नहीं लौटा देंगे अपने आप ही रहेंगे, जाएंगे कैसे हैं, जाने का उपाय है नहीं। तो बड़े चतुराई से अरे मांगना है तो मांगो, प्रभु से मांगो, रोना है तो उनके से ही रो, दुनिया से रोने से क्या लाभ है। उनने गुरुजी को कहा, गुरुजी बोले बेटा देखो तुम्हारे गुरु माता ने कहा तो उनका एक ही तो संतान पुत्र था, वो समुद्र ने ले ली। अच्छा गुरुदेव तो उनको लौटा के ला के देखे, ये दक्षिणा होगा तुम चले जाना। कहो तो दिया, तुरंत कृष्ण बलदेव को लेके पहुँच गए समुद्र। समुद्रदेव वरुण देव आए, बोले गुरुपुत्र को आपने ले लिया? बोले नहीं, हमारे यहाँ एक पंचजन्य शंख है, बहुत बड़ा असुर है, पंचजन्य असुर, वो खा गया। अच्छा, असुर को लड़ भीड़ करके मारा किंतु उनके पेट में कोई हड्डी गंदा कुछ भी नहीं मिला है। तब बोली कहाँ है, फिर संजमनीपुरी में पहुँचा है। जब महाराज जी के पास, क्या आपके पास हमारे गुरुपुत्र है? तो बोले अच्छा मैं लाता हूँ। जब महाराज तो खुशी से भर गए, आरती उतरना, शंख बजाना, और कृष्ण पहले पांचजन्य शंख को लेके और जाकर संजमनीपुरी में बाहर ही बजा दिया, और सारे कांपने लग गए। उस समय क्या हुआ, जितने जमलोक में जितने पापी लोग थे, सत उनका कष्ट का फल भोग रहे थे, सबका कष्ट दुख चला गया। वो शंख के ध्वनि से उनके हृदय के पाप ताप भाग गया, वो आनंद समुद्र में निमज्जित हो गए। बोलते यार कौन महापुरुष है सदा सर्वदा यहाँ विराजमान रहो, जाओ नहीं फिर जब मर्दा हमें दुख देंगे नहीं हैं आप रहने से। अब हैं क्या होगा? तब कृष्ण ने जब महाराज जी से पूछा इन लोगों को इतना कष्ट क्यों, बोलिए ऐसे दुष्ट है हैं केवल आपके विरुद्ध ही नहीं सबके विरुद्ध है, सबको भोग करना चाहता है, सबको वश में करके सबको सताता है। तो जब सताता है तो इनको भी थोड़ा दंड मिलना चाहिए, दूसरे को दुख देने से कितना कष्ट होता है इन्हें भी अनुभव होना चाहिए। हैं बाप छोटा बच्चा माँ क्या करते, बच्चे को ऐसे मारते थप्पड़ गालों में पांच उंगली बैठ जाए हैं, किंतु उन्हें कोई मारे तो तब ना मजा लगे, आए देख लो मार के लोहे का सरिया ले लिया दे पीटना शुरू कर दी, मारे ना खोपड़ी में दो चार सरिया, तो जब मार कर दे ऐसी सरिया दे दी दो चार नहीं पड़े तो कैसे समझेंगे, दूसरे घर में आग लगा दी, दूसरे को जहर दे दी, दूसरे को सताया, तो उनका क्या होगा? इससे इनको अकल आना चाहिए, इससे जमपुरी संयमनीपुरी बनाया गया, संयम सीखे नियम में आए हैं, मेरे औलाद है मैं जो इच्छा सो करूँ डांडा पीट दूँ, अच्छा तू भी तो किसी का औलाद है, तेरे ऊपर मैं खोपड़ी फोड़े ना तब ना पता पड़े। इससे सकर्म फल वो पुमान, जो अपने कर्म करता है फल उसी को ही भोगना पड़ता है, दुनिया कोई पाप बाप को बांटेगा नहीं, हिस्सा नहीं करेगा, अपने कर्म अपने लिए है, ऐसा दुष्कर्म के परिणाम भोगने के लिए संजमनीपुरी है। कृष्ण ने देखा कैसा भी है तो मेरा तो है, उस समय भगवान के शरीर से कृपा मूर्ति करुणा मूर्ति कौन स्वयं हैं 11 इंद्रियों को संयम नियम में लाने के लिए भगवान के सेवा में लाने के लिए वो ग्यारसी देवी एकादशी देवी प्रकट हो गई। जैसे प्रकट हो गए तो प्रभु से बोला प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, बोले मेरा आदेश यही है इन लोगों को शिक्षा दो, इनको सिखाने वाला जगत में कोई नहीं है, ऐसा दुष्ट दानव मानव है स्वतंत्र आज़ाद है ये किसी के बस में नहीं अन्न मानता है, या तो इसके इंद्रियों को तोड़ डालो बर्बाद कर दो, या तो इंद्रियों को भगवान के सेवा के उपकरण है सेवा में लगा दे, इसको हैं लाइक बना दो। बोले ठीक है, अब सबको बोले आप तुम एकादशी देवी के चरण में शरणागत हो जाओ, व्रत करोगे कि नहीं, इनके अधीन में आश्रम लोगे कि नहीं हैं। सब लोग बोले प्रभु जैसे आपकी इच्छा है, आप कहें तो हम सब कुछ करने को तैयार, ये जमपुरी के कष्ट नहीं सहन कर सकते। बोले तुमने भक्तिम ठाकुर जी ने इससे लिखा हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेस, परे उद्वेग दिया कत दिया जीवर क्लेश, निज सुख लगे पापे नहीं डोरी दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखी हैं और पर दुखे सुखी हैं। कैसे हम लोग हैं दूसरे को सुख देकर के दुखी हो जाते, दूसरे को दुख देकर के हंसने लग जाते, वाह बड़ा आनंद आया हैं, आज दुखी है ना ताली बजाता है तो, और सबसे पाप कार्य में रोते है कैसे सुधार होगा? तब एकादशी देवी ग्यारहवीं देवी कहती है ठीक है, यदि मेरे पास कोई आया शरणागत हुआ तो मैं उनको मुक्त करके सदा के लिए भगवत सेवा में समर्पण करूँगा और उनके इंद्रियाधिपति के सेवा में दूंगा और जीवन भर के लिए सब रोग शोक दुख मोह संसार हैं पाप पुण्य सबसे अतीत करके हैं उनको मुक्त कर दूंगा। तो ओ देवी तो प्रकट हुई किंतु उन्होंने कहा हमारे गुरुपुत्र कहाँ हैं, उनने क्या पाप किया, क्यों जमपुरी में आया हैं, कैसा भी है हमारे गुरुपुत्र को लाओ। तब जब महाराज उपहार लेकर के गुरुपुत्र को लेकर के आया, कृष्ण बलदेव गुरुपुत्र को लेकर के आके जबकि दे दिया गुरु माता को, गुरु माता तब भी दुखी ही रही, पुत्र तो मिल गया किंतु पुत्र मिलने से नहीं कृष्ण से जो कृष्ण की जो सेवा किया और कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त किया बलदेव का वो छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए शांति मुनि के माता हैं और ये शांति मुनि के पुत्र हैं सब कृष्ण के साथ ब्रज में सदा के लिए आई गए, हाँ रह न सके कोई। तो अभी यहाँ कहते हैं ये साधन सिद्ध नहीं है, कृपा सिद्ध है, किंतु साधन करना पड़ेगा। क्या साधन? उनके कृपा प्राप्ति के लिए साधन करना पड़ेगा। नहीं तो हम साधन कर रहे हैं कुछ और वस्तु प्राप्ति के लिए, तो काम नहीं चलेगा। फल तो मिल जाएगा, भगवान दे देंगे, किंतु हम वंचित हो जाएंगे, ठग जाएंगे। इससे कैसे भगवत कृपा मिले? हम जिबे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, कारण कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनिबे खेले। किसी की निंदा चर्चा में मत जाओ, किसी को दुख के साथी मत बनो, सुख के साथी मत बनो। सबको सम्मान देकर के, आदर देकर के भगवत कृपा पात्र है ज्ञान करके, और भगवत कृपा के लिए सबके निकट प्रार्थना करो। अब यहाँ क्या हुआ, जब कृष्ण बलदेव ब्रज में आ गए, ब्रज में तो नहीं, मथुरापुरी में, मधुपुरी में आ गए। अब उसके पहले भी बतलाया, मधुपुरी में जब कृष्ण बलदेव थे तो उनका जनेऊ संस्कार करने की बातें आई। कितना बड़ा अनुष्ठान मनाया, सारे विश्व को निमंत्रण दिया। नारद ऋषि को बोला सबको निमंत्रण दे दो, किंतु ब्रज में मत जाना। नंदसुता को निमंत्रण मत देना, ब्रजवासियों को निमंत्रण मत देना, क्योंकि उनको निमंत्रण देने से वो जैसे आएंगे, कृष्ण बलदेव उनको देखेंगे तो वो नहीं रह पाएगा, वो लौट के चला जाएगा ब्रज में। इसलिए इनको जन्म संस्कार करा के यहाँ से बहुत दूर भेज देना है, इतना दूर भेज देना है जिसे अत पता न चले और भूल जाए। दिन रात ब्रज के लिए छटपटाता है, रोता है, खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, बोलता नहीं किसी से, हैं, और कोई मतलब नहीं रखता। दूर जाने से थोड़ा मन साफ सुथरा हो जाएगा, हट जाएगा। किंतु जिनके ममता है, हैं, तो उन ममता को कौन हटा सकता है? ये संभव नहीं है। तो अभी ये सब प्रसंगों को हम लोग कभी सुनेंगे। अभी क्या है, आज जो सौर वर्ष है अर्थात चंद्र वर्ष, वैष्णव लोग चंद्र को मानते हैं और उनका तिथि मानते हैं, और सौर वर्ष होता है सूर्य का तिथि। तो सूर्य के हिसाब से आज से कार्तिक शुरू होना है, तो आज से आकाश दीपदान होगा एक महीना तक। आकाश दीपदान सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि हमने जन्म जन्मांतर में पांच तत्वों के अधीन रहा, अर्थात ये शरीर स्थूल शरीर मिला। स्थूल शरीर मिलने पर अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी, पांच चीज से शरीर मिलता है। ये पांच चीज में विलीन हो जाता है, किंतु ये जो हवा है, आकाश है, शून्य है, ये आत्मा शरीर छोड़ने के बाद वो भ्रमण करता है, उसका उद्धार नहीं होता है। जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा, वो नहीं आवरण को पार करके जा नहीं सकता, स्थूल और सूक्ष्म आवरण पार नहीं कर सकता। स्थूल शरीर छोड़ दिया, किंतु सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म आवरण को नहीं छोड़ सकता, मन बुद्धि अहंकार और चित्त का आवरण है। तो वो आकाशमंडल में विराजमान है, किंतु कार्तिक मास आने पर कोई भी यदि भगवान के लिए दीपदान करता है, उसमें कहते हैं दामोदराय नभसी तुलायाम लुलया सह प्रदीपानाम प्रवच्छामी नमो अनंताय वेदसे। हे प्रभु, वेद से मतलब कांटा गणना, जन्म जन्मांतरों का जो अनर्थ है, पाप है, रोग शोक मोह है, जो कुछ हमने संग्रह किया, ये हमारे मुझे ही छिद रहा है, और जो मुझे छूता है, मेरे को देखता है, मेरे को स्मरण करता है, वो भी पापी हो जाता है। क्यों? हम इतना दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्ट, हमने कितनों को भ्रष्ट किया, कितनों को दुख दिया, हैं, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाया, और न अच्छा शिक्षा हमने लाभ नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, और बुरे बने और सबको बुरा बनाया, कितना हम दुष्ट हैं। एक व्यक्ति होता है, चलो अपना दुख भोगता है, किंतु अपने दुख भोगने के चक्कर में कितनों को दुखी कर रहा है, हैं, अपने कुकर्म करता है, कितनों को उसमें फंसाता है। तीसरे, हे दामोदर, मैं आज आप जो लोलया सह अर्थात श्रीमती आदरणी शक्ति के साथ आप विराजमान हैं, आपके निकट में यह दीपदान करता हूँ, अर्थात इस आत्मा को समर्पण करता हूँ, आप स्वीकार कर लो। भगवान ने क्या किया, जबकि गोवर्धन में दानखाटी में साकरी खोर में खड़े रहे, कोई भी आया कुछ लेकर के प्रभु ने बोला टैक्स दो, झूठ मूठ कह गए उठा लेता है, नहीं कहते तुम अपने को समर्पण करो, वस्तु समर्पण करने से नहीं होगा, अपने को समर्पण कर दो गिरिराज जी में। ये गिरिराज जी में इतना सामर्थ्य है, ओ गोवर्धयति गोवर्धन, गोप गोपी गोकुल गाभी हैं, ये सबके आत्मा का कल्याण करने वाला है, सबको हैं भगवान के चरण में समर्पण करने वाला है। तुम तो करोगे नहीं, तुम तो पत्ता फल फूल दही दूध दे दोगे या मक्खन थोड़ा दे दोगे, ये तो अपने को तो दोगे नहीं। तो आत्मसमर्पण का स्थान है ये दान घाटी, यही दान देने का होता है, अपने को यदि किसी ने दान दिया तो ये आकाश में जो दीपदान है, कहते आत्मा का जो ज्योति है अर्थात तेज है, वो तेज धीरे 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 सुप्त लुप्त हो गया। ये आत्मा कैसे प्रकाश में आएगा, तमसा माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाला में कैसे आएगा, जब भगवान के लिए दीपदान करता है तो अपना आत्मा का जो ज्योति अर्थात शक्ति प्रकाश है वो भगवान के दीपदान के प्रभाव से अर्थात अपने को भगवान के चरणों के स्मरण के प्रभाव से ज्योति के उनके निर्मल कृपा कौन अर्थात सूर्य है तो सूर्य की रश्मि है, भगवान है तो भगवान के जो शक्ति है, अग्नि है तो दाही का शक्ति है, ऐसे भगवान के निकट आने से क्या कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, कृष्ण आलोक प्रदान करेंगे नित्य काल के लिए, अंधकार में फिर जाना नहीं पड़ेगा। और भगवत आलोक में भगवत परिकर भगवत भक्त दर्शन होगा और उनके सानिध्य मिलेगा, और अंधकार में तो हम कहाँ सड़ रहे हैं कोई अता पता नहीं। इससे जीवन में ये आकाशदीप दान देने के लिए कार्तिक के महीना आने पर एक महीना तक संध्या होने पर तो दीपदान करना चाहिए। अच्छा अब ये यहाँ तक गया, और काल समर्थ लोगों ने बहुलाष्टमी माने हैं, राधा कुंड का प्रकट, वैष्णव का आज तिथि है, समस्त वैष्णव कैलेंडर में आज का तिथि है। तो ओ क्योंकि स्मार्टों का क्या होता है, यदि दिन भर सप्तमी रहे रात को अष्टमी आ गया 12 बजे तो उस दिन ही जन्माष्टमी करेंगे। ऐसे ही ये जो राधाष्टमी है ये कब मनाते हैं, वो ऐसे ही अष्टमी आ गया तो मनाएंगे, किंतु यह नियम नहीं। नियम है ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के समय में यदि जो तिथि आती है वो तिथि की मान्यता होती है, उसी को माना जाएगा। तो वैष्णव के विचार से हिसाब से काल दिन भर सप्तमी या रात को अष्टमी आने से 12 बजे वो लोग स्नान किया। अब ये आता है कि राधा कुंड में स्नान करने की बात क्यों है, अब ये राधा कुंड का प्रकट को लेकर के बहुत विचार हम लोगों ने काल सुना कि चैत्र के पूर्णिमा में राधा कुंड और कृष्ण कुंड का प्रकट लीला सुनाई पड़ती है, जाना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, किंतु यह द्वापर युग की बात है, इसके बाद में समस्त तीर्थ लुप्त हो चुका है। जब महाप्रभु जी ने गोस्वामियों को भेजा, भेजने के बाद में महाप्रभु स्वयं भी आए, सब गोस्वामी लोग तब तक नहीं आए, लोकनाथ दास गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी कुछ आचार्य जन आए थे, तो महाप्रभु स्वयं ये कार्तिक के महीना में विजयादशमी करके महाप्रभु जगन्नाथपुरी से पैदल यात्रा की। कोई बोलते हैं विजयादशमी और कुछ वर्णन आता है रथ यात्रा के बाद में ही महाप्रभु जी चल दी। जैसे भी है महाप्रभु जब ब्रज में आए तो ब्रज भ्रमण करने के बाद महाप्रभु जी ने आकर के गोवर्धन के कुछ अंतिम छोर में यहाँ पर कुसुम सरोवर मानस गंगा पार करके श्यामतला ग्वालपोखरा जब इधर से महाप्रभु परिक्रमा करके आ रहे थे तो यहाँ स्नान किया काली खेत में गौरी खेत में, अर्थात धान का खेत अरेट गाँव सब लुप्त हो चुका था, तो गांव आरिड गांव वहाँ पर स्नान किया और बोले ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो किसी का कहना है कि महाप्रभु ने स्नान किया उस दिन से राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुए, ये किसी किसी का कहना है। किंतु ये अभी कौन से तिथि में किया था यह कोई प्रमाण नहीं है, न तो भक्ति रत्नाकर में है या न कहीं है, कि भी किसी किसी का ये कल्पना मात्र हो सकता है या सत्य भी हो सकता है, इसके ऊपर हम आलोचना नहीं करते न इसके ऊपर हम कसाकसी करते हैं। किंतु राधा कुंड में स्नान किया तो राधा कुंड का अष्टमी का कोई मतलब है कि नहीं, नाम है बहुला अष्टमी है, राधा कुंड अष्टमी नहीं है। और ये भी बात है, ये राधा कुंड का प्रकट है, यदि कोई माने कृष्ण कुंड का प्रकट है तो कृष्ण कुंड में तो कोई स्नान करता नहीं, करता है राधा कुंड में स्नान और रात को 12 बजे हैं। यदि कृष्ण कुंड प्रकट हुए, राधा कुंड उस समय प्रकट हुआ, तो दोनों में महाप्रभु ने भी स्नान किया। तो ये लोग क्यों एक कुंड में स्नान करते हैं, कृष्ण कुंड में झांकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है, और राधा कुंड के कितना चहल पहल, लाइट गाजा बाजा और रात भर हैं स्नान दान दक्षिणा सब कुछ चलता है, ऐसा क्यों? इसलिए ये जानना चाहिए इसका नाम बहुलाष्टमी है। ये बहुलाष्टमी क्यों? तब जब आप कार्तिक के महीना आता है, ये ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधारानी का स्पेशल महीना है, ये ऊर्जा व्रत है, कार्तिक व्रत नियम सेवा दामोदर व्रत या ऊर्जा व्रत है। कोई कोई कार्तिक व्रत करता है, कोई नियम सेवा करता है, कोई दामोदर व्रत करता है, कोई ऊर्जा व्रत करता है, सब एक नहीं है, बहुत इसमें वैशिष्ट्यपूर्ण है। तो बहुला अष्टमी का तात्पर्य है, राधारानी के जितना सखियाँ मंजरियाँ ब्रजदेवियों ने जब कार्तिक मास आया, राधारानी का मास आया, तो इन लोगों ने पहले ही ऐसे तपस्या किया, ये महाजोगिन है और जोगिनों के अधीश्वरी हो गया, अर्थात इन लोगों के अंदर समस्त सामर्थ्य योग्यता आकर के स्वरूप शक्ति के कृपा से विराजमान हो गए। तो इन लोगों ने अपने अधीश्वरी की पूजा करने के लिए और भोला सखी के साथ समस्त ब्रज के ब्रज देवियाँ सब प्रकार के उपायन के साथ आए। यदि कहो बरसाने क्यों नहीं पहुँचे, जावट क्यों नहीं पहुँचे, तो वहाँ पर राधारानी किसी की पूजा स्वीकार नहीं करेगी और न करने देगी। वहाँ श्रीमती राधारानी विश्वान महाराज को बहुत सम्मान करते हैं, अपने पिताश्री नहीं केवल, वहाँ उनके चाचा है और उनके नानी है, दादी है और बड़े सब लोग है। वहाँ पर संभव नहीं है कि श्रीमती राधारानी का कोई पूजा कर ले, आराधना कर ले, तपस्या कर ले। कृष्ण ने भी आराधना की कहाँ? गह्वर वन में साकरी खोर के पार करके, चिक्सोरी गांव के पार करके, गह्वर वन के अंदर में होली के पूर्व नवमी को आकर के कृष्ण ने तपस्या की। एक दिन दो दिन नहीं, 9 दिन तक तपस्या की और मंत्र का जप किया, फिर श्रीमती जी के दर्शन प्राप्त किया, पूजा किया, उनके चरणों के महावर लगाया और सारे शरीर में चरणों के पराग मल करके तब प्रसन्न होकर के आए और जगत को ये महावर बांटे, अर्थात धूली बांटे और जगत को पवित्र किया। क्योंकि जगत के जीव अपवित्र हो चुके हैं, क्योंकि मैला कुचेला दुनिया के मैलों को अपने ऊपर धारण कर लिया, किंतु ब्रज के रज अर्थात राधारानी के चरण रज, सखियों के चरण रज कभी धारण नहीं किया, पवित्र कैसे होंगे? इसलिए इसका नाम होली है। पवित्र होने के लिए भक्तों के चरण धूलि सब समय धारण करना चाहिए। और भक्तों में महान श्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधारानी और ब्रज देवियाँ हैं, कृष्ण ने दर्शाया तो इन लोगों ने वहाँ पूजा स्वीकार किया कृष्ण का। ये लोग दूसरे दिन दशमी को खुद पूजा करने के लिए नंदगांव पहुँच गए, सारे देवियाँ जाकर के पूजा किया और चरण धूल लिया। वो भी कहाँ? नंद भवन में संभव है नहीं। कहाँ पर? नंदबाग में। मिलने के लिए सब आए। किससे आए? बोले खेलने आए। तो कुछ बोलेगा नहीं नंद बाबा, कुछ बोलेगा नहीं न जसोदा माता, खेलने आए। किंतु खेलने थोड़ी आए, उनके चरण धूल लेने आए। पूजा किया, अभिषेक किया और उनको पूर्ण रूप से फिर उनके चरण धूल ली। तो अब क्या हुआ? राधा बरसाना में नहीं पूजा किया, अन्न व्रत धारण किया, अन्न जावट में राधा कुंड में आए। क्योंकि ये कुंड कुंडेश्वरी, ब्रजेश्वरी हैं, रमेश्वरी, खमेश्वरी, वृंदावनेश्वरी हैं, ये कहाँ विराजमान है? यदि उनको ढूंढना है, प्राप्त करना है, तो राधा कुंड में जाओ। राधा कुंड, राधा रानी के कुंड, ये समझना है कि पानी भरा हुआ एक सरोवर है? नहीं। हमारे आचार्य ने क्या कहा? चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज शत शत, एक दो नहीं सैकड़ों कुंज है। और चिंतामणिमय जैसे सोचेंगे उससे अधिक कुछ ही है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना सुंदर वर्णन दिया है। और भक्तिम ठाकुर जी ने भी कहा राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर। तो ये यदि देखना है कृष्ण को यमुना किनारे जाओ, और यदि राधा रानी को ढूंढना है तो राधा कुंड तट कुंज कुटीर, वहाँ पर राधा रानी को प्राप्त करना है। इसे हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद ने कहा जैसा कदापि वसनांचले खेल नृत्य धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी है जोगेन्द्र दुर्गम गति के मधुसूदनपि तस्या नमस्त विश्वानु भुवो दिशोपि। मधुसूदन स्वयं राधा रानी के वसनांचल से पवन स्पर्श करके आया, कृष्ण को स्पर्श किया, कृष्ण धन्याति धन्य मानने लग गया अपने को। तो यदि राधा रानी को प्राप्त करना है तो राधा कुंड में जाओ। इसलिए बहुला सके कि अनुगत्य में सारे ब्रज के देवियाँ एक महीना के लिए राधा रानी के उपासना करने के लिए आ गए। यदि कहो राधा रानी तो हमारा देवी है, ईश्वरी है, हमारे सखी है, उनकी क्या उपासना करना है? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम रहते हैं गुरु के पास, गुरु पूजा नहीं करते। वैष्णव के पास रहते हैं, वैष्णव की पूजा नहीं करते, न उनका आदर करते, न उनका सम्मान करते। कैसे पूजा करेंगे? देखें आज आपका जन्मदिन है ना, ढाक ढोल पीट करके खूब बंदरवार लगा करके और केक और बना लगा कर और क्या करेंगे? स्टॉल लगा देंगे, पाव भाजी का है और क्या चटनी और क्या शराब का, आइसक्रीम शराब वाइन वाइन फाइन दिस इज कॉल्ड आइसक्रीम। तो बस ये पूजा नहीं है, ये सब अपना भ्रष्ट लोगों का अपना भ्रष्टाचार है, ये फैला करके बर्बाद कर दिया सब। किंतु श्रीमती राधारानी की पूजा करने के लिए सब देवियाँ उपहार के साथ आई। कैसे? राधा कुंड में राधारानी के लिए सुंदर सिंहासन बनाया, फूलों का कुंज बनाया। और यह कुंज बना करके, ये हमारा कल्पोल कल्पना नहीं है, दास गोस्वामी का विलाप कुसुमांजलि को पढ़ना शुरू करो। यदि विलाप कुसुमांजलि नहीं पढ़ा और ब्रजविलास तब नहीं पढ़ा, मुक्ताचरित नहीं पढ़ा, तो आप कभी राधा कुंड के महिमाओं को कभी समझना तो चिंता भी नहीं कर सकते। दास गोस्वामी बैठ करके देख रहे हैं, आचार्य लोग चरण देख रहे हैं, क्या कार्तिकेश्वरी, ब्रजेश्वरी, मदेश्वरी, प्राणेश्वरी, ऊर्जेश्वरी, श्रीमती राधारानी विराजमान है राधा कुंड में। ये सरोवर में, लेक में नहीं, पानी के अंदर में नहीं, हजारों सैकड़ों कुंज है, जिसमें राधारानी का खुद का कुंज है। ललितानंद कुंज, विशाखानंद कुंज, मदानंद कुंज, कितने नाम है। इसे प्रेम भक्ति चंद्रिका को ढंग से पढ़ना चाहिए, जिससे कि कुछ पता चले कितना कितना कुंज कुटीर है। वहाँ बोला सखी क्या अनुगत्य में इन लोगों ने राधारानी का उपासना शुरू कर दिया, पूजा शुरू की। उसको दास गोस्वामी ने दिव्य नेत्र से जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं ये स्थान उपासना का क्षेत्र है। इसे प्रभुपाद जी ने लिखा उस श्लोक का कीर्तन में, वैकुंठा जयंत बरा मधुपुरी तत्रापि गोवर्धन वृंदारण्यम उदार पानी तत्रापि गोवर्धन राशुस्वाद राधकुंडम यहाँ पे गोकुलपते प्रेमामृत प्रभनाथ। इसमें क्या लिखा, कौन विवेकी व्यक्ति होगा राधाकुंड छोड़कर के उन्नत जाकर बसवास करेगा या घर बनाएगा? बसना है तो राधाकुंड में बसो, जहाँ की सदा राधारानी की उपासना कर सके, राधारानी के चरणाश्रय मिले, उनकी पूजा कर सके। इसे सखियों को साधारण मत समझना, वो लोग केवल कृष्ण पूजा करने के लिए ब्रज में नहीं आए, ऐसे कृष्ण के साथ मथुरा भी नहीं पहुँचे न द्वारका गए, राधारानी को छोड़कर एक कदम कभी नहीं बाहर आए। तो इन लोगों ने अष्टमी बहुला अष्टमी के दिन से कार्तिक शुरू होता है चांद्रमास नहीं सौरभ वर्ष आज से पास शुरू हो गया पूजा। अब ये बहुलाष्टमी जिस दिन आएगा समझना चाहिए, उस दिन सब सखियों का मंजरियों की अभिवादन करके उनके आनुगत्य में आश्रय में तब जाकर राधा कुंड में पहुँचने पर राधारानी की पूजा संभव है। नहीं तो हम खुद पहुँच गए पैत्ता पानी में खड़े हो गए लिखा है कृपा कटाक्ष स्त्रोत्र में राधाकुंड जलस्थित्या जपटेत, जो राधाकुंड में पानी में खड़े होकर के उरुद्दग्न नाभिदग्न हृदयदग्न कंठदग्न च राधाकुंड जलस्थित्या जपटेत साधक सत, यदि 100 बार यदि ये इतना पानी में खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत्र पाठ किया राधारानी दर्शन दे देंगे। किंतु इससे क्या करोगे दर्शन करके? हम नित्य उनके सेवा में पूजा में रहेंगे या उनसे कुछ लेकर के भाग जाएंगे कहीं और? भगुड़े हैं घर घुसा है, बस कहाँ जाना है, झोपड़ी को खोपड़ी में लेके वहीं घुसना है, किंतु उनके चरणारविंद में नहीं आना है, उनके सेवा में नहीं आना है। अपने मनमोजी जहाँ स्वतंत्र लालची भोगी तो भोगों के लिए भागेगा, किंतु जब द्वैवियों के अनुगत्य में मंजरियों के अनुगत्य में जब अष्टमी आने पर पूजा के लिए पहुंच जाएगा। पूजा का मतलब है प्रकृष्ट रूप में इज्जा, जो प्रकृष्ट रूप से उनके प्रतिविधान कर सके। सदा के लिए हमें वो राधाकुंड वास अर्थात उनके चरणारविंद में वास चाहिए। दास गोस्वामी क्या कहते हैं, तवै वास्मी न जीवामी त्वया विना इति विज्ञा राधे तंग नयमाम चरणांतिके। हे राधारानी कृपा करो, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, आपके चरणारविंद में मुझे स्थान दो चिरकाल के लिए। हैं क्या कहते हैं, देवी दुख सागर उदरे हैं निमग्न, क्या क्या स्तुति कर रहे हैं। ऐसे राधाकुंड में को पहुँच गए और दास गोस्वामी के अनुगत्य में ऐसे स्तुति करना सीखा, प्रार्थना करना सीखा, तो सदा सदा कहाँ जाएंगे? दास गोस्वामी वहाँ बैठ करके हैं सुंदर मानसिक सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खीर बना रहे हैं, गाय के दूध खुद धो के ले आया, कड़ के ले आया सोने के बर्तन में, और सुंदर ऐसे नहीं पानी में चावल दे दिया, जब पक गया थोड़ा दूध डाल दिया और थोड़ा चीनी डाल दिया, खीर हो गया। आलसी लोग हैं ना, चलाना पड़ेगा ना, तो इसे पानी में चावल पका लो तो आसान हो जाएगा, दूध थोड़ा ऊपर से डाल दो, खीर हो गया। ऐसे खीर थोड़ी बनता है, चावल को घी में पहले भूनो, इसके बाद में सारा मेवा दो, फिर दूध को देखा कर चलाओ, जब पक जाएगा तो शर्करा अर्थात मधु हैं और जो सुंदर सुंदर शर्करा वो सब दो, फिर उतारते समय सुंदर इलायची बादाम और काजू पिस्ता सब दो, नहीं फिर घी डालो, सुंदर खीर बनाओ और ऐसे स्वादिष्ट खीर सुगंध रोज बनाता है, रोज भोग लगाता है। आज क्या हुआ, आज भोग तो लगाया, रूपमंजरी को दिया, रूपमंजरी ने ललिता देवी को दिया, ललिता देवी ने राधारानी को दिया, राधारानी ने कृष्ण को खुद अपने हाथ से खिलाया। जब खिलाया कृष्ण बोले मैंने मेरा जीवन तो सार्थक हो गया, सुगंध इतना स्वादिष्ट खीर हमने कभी नहीं खाया, कृष्ण ने राधा रानी को खिला दिया, खा के देख कैसा है, देख तूने बनाया, तू को खाती नहीं, बोले ये मैं तो नहीं बनाया, बना ही नहीं, तो किसने बनाया, तो ललिता को पूछना पड़ेगा, ललिता जी किसने बनाया, तो बोले रूपमंजरी ने दिया, रूपमंजरी को पूछा किसने बनाया, और रति मंजरी ने बनाया, रति मंजरी को बुलाया, बोले वो तो आएगी नहीं, क्यों, कृष्ण के दर्शन करने भी नहीं आते, घूंघट तान करके हैं तो परपुरुष का दर्शन नहीं करती, तो कृष्ण परपुरुष है। राधा रानी का सहेली ऐसे होते हैं वो कभी भी कृष्ण के साथ मिलना तो दूर है, उनका दर्शन भी नहीं करती, उनके मन में भी नहीं लाना चाहते कि ये आएगा तो मुझे छीन लेगा, हमारे सेवा से अलग कर देगा, क्यों, हम तो ईश्वरी के हैं, उनके साथ कौन जाएगा, वो तो मना देने कहाँ लेके भग जाएगा, क्या करेगा, कोई अता पता है नहीं, इसे शांत है, तो बोले जा उनको थोड़ा खिला के आ। ये लोग सारे सखियाँ मिल करके आए, वो ध्यानस्थ हैं तो चम्मच से नहीं हाथ से, आज इतनी कृपा है, और उसने नहीं रूपमंजरी ने नहीं ललिता देवी ने राधा रानी स्वयं हाथ से कृष्ण के प्रसाद हैं उनको खिला दिया। जब खिला दिया अब तो थोड़ी देर में उनका पेट फूलने लग गया, ढका रहने लग गया और अवस्था खराब। अब ब्रजवासी लोग सब बाबा को बहुत मानते सम्मान करते, आया देखे बाबा अस्वस्थ हो गया, कभी तो बीमार होते नहीं, आज बीमार हो गया, तुरंत खबर पड़ गया चारों ब्रज में, पूरे ब्रजमंडल में, और बल्लभाचार्य जी पुत्र विट्ठलनाथ बहुत सम्मान करते थे, खुद बल्लभाचार्य सब गुस्से में से मिलते थे, कितने सम्मान करते, उन्हें तुरंत मथुरा से राजवैद्य बुला करके ले आया, ना कर बाबा का दुखो, नाड़ी देखो क्या हुआ बाबा को, तो देखा नाड़ी देखा, वैद्य बोलते राजवैद्य बाबा ने आज बादाम खाया, बादाम का खीर खाया, कि वैद्य से कोई थोड़ी छिपा सकता है, तो नाड़ी देख करके ब्रजवासी बोलते वैद्य जी झूठ बोलता है, अरे कोई जीवन में कुछ खाता नहीं, एक दोना मट्ठा पीता है सारा दिन में, आज जो कुछ खाते नहीं कोई निकलते नहीं, खीर कहाँ से खाएगा, झूठ बोलते हैं, बोलते नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वैद्य हूँ, मैं सब जानता हूँ, नाड़ी देख कर बोल सकता हूँ, पूछो बाबा से, बाबा से पूछे बाबा आपने आज बादाम का खीर खाया, बोले मैं रोज़ तो बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ, किंतु आज क्या हो गया पता नहीं, ये लोग सब आ गए, मैं भोग लगाया, ये आकर मेरे को जबरदस्ती करके कुछ खिला दिया। साधारण लोग समझे कोई ब्रजवासी आ गया होगा, ये खिला दिया होगा, हैं, किंतु वो तो अंतर्नेत्र से अंतर्दर्शन खुद करा दिया सबको, देख रहे हैं राधा रानी स्वयं आकर के उनको बादाम का खीर खिला दिया। तब वैद्य जी ने दवाई दी, जो कुछ करा तब कहीं जाकर के शांति हुआ। तो कहते हैं ये राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, कहते हैं ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो परन हराऊं। कहते हैं यहाँ वेणुसिंह पद चिन्ह मेघमाला वसंत शशांक शंख करताला, ये राधा कुंड में गोस्वामी जन भजन करते हैं, क्यों, चित्त स्थिर करके सदा के लिए राधा रानी के अनुगत्य में आश्रम में कृष्ण की सेवा उनको उपलब्ध हो जाएगा। तो अब क्या हुआ देखो, अष्टमी बोहला अष्टमी में बोहला सखी ने कृष्ण के दाल बाटी चूरमा बनाया बोहला गांव में, बाटी गांव में, उसका नाम बाटी गांव है। जब कृष्ण गोचरण में आए ना तो कृष्ण के लिए बाटी चूरमा बनाया, तो कृष्ण ने भोजन किया, खुश हो गए, किंतु राधा रानी नाराज हो गए, तूने बाटी चूरमा बनाया मेरे को एक बार पूछा भी नहीं, हैं, अच्छा अब से नाराज होकर बैठ गई, उस बोले उस गांव को इधर देखना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि ये सखी शहद चंद्रबली का पार्ट ग्रुप होगा, किंतु वो राधा रानी के दिन रात अनुस्मरण करने वाली। अब क्या किया, ये राधा रानी खुश करने के लिए ये अष्टमी को सबको लेकर के राधा कुंड में आकर के महीना तो व्रत किया और पूजा किया आराधना किया, तब खुश होकर के राधा रानी ने उनको इसका नाम बहुलाष्टमी कर दी। और यही दिन पवित्र, इससे साधारण जगत के लोग सोचते हैं हमने जो कुछ किया अनर्थ जो कुछ है दूर हो जाएगा, राधा रानी खुश हो जाएंगे, हम स्नान कर लेंगे, कुछ पूजा कर देंगे, इससे लोग आकर के करते हैं, किंतु एक महीना रह व्रत कर पूजा करो, नहीं एक क्या पेठा चढ़ा दिया, कोई काशीफल चढ़ा दिया, कोई अपेल चढ़ा दिया, कोई एक कुछ और चढ़ा दिया, कपड़ा फेंक दिया ना करके, बस स्नान करके चला गया, मेरा मनोरथ सिद्धि हो जाए। तो जैसे कृष्ण अकामो सर्वकाम मोक्ष काम उदारधि तीव्र न भक्ति योग न जाते पुरुषम परम, तो आधारणी शक्ति वो क्या कमे सब कुछ कर सकती है, किंतु यह बहुत गहन तत्व है। यदि यदि जानना है तो राधा रस सुधा निधि अध्ययन करो, तो देखो प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु के विचारों को कैसे प्रकट किया और कैसे रखा। आजकल तो नाम भी नहीं सुनता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया ब्रज में जाओ, अर्थात क्लास शुरू करो, शिक्षा देना शुरू करो। गोस्वामी का ग्रंथ हमारा पाठ्य पुस्तक है, यदि जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो इन गोस्वामियों का ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करना है, नहीं तो एम ए बी पी एच डी करके वो राधा तत्व का उपलब्धि नहीं कर सकता, और न राधा कुंड का उपलब्धि कर सकता, और न ब्रज का कुछ अनुभव ही कर सकता। इसे ब्रज करी बास रागानुगा होइया स्मरण कीर्तन करो एनखिल काल करह जापन उपदेश सारा धरो, ब्रज में बास करो रागानुगा होकर के, तदनुरागी जनानुगामी तब कहीं जाकर के उनका अनुरागी को अनुजाई होने से वो लोग सिखाएंगे तब कुछ आगे बढ़ सकेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, अभी सब लोग परिक्रमा जाएंगे, फिर बाद में आगे की भाग्य होगा आगे की सुनेंगे। गौर प्रेमानंदी हरि।